ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே दही के मटके को तोड़कर दूसरे कमरे में उखल के ऊपर खड़े होकर जब बंदरों को दही मक्खन आदि बांटना शुरू किया, तब तक वहां माता यशोदा पहुंच गई हाथ में छड़ी लेकर, क्योंकि वो जानती थी कि श्री कृष्ण ने ही ये मटका तोड़ा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने माता यशोदा को उस कमरे में प्रवेश करते हुए देखा, तुरंत उस उखल से नीचे कूद पड़े और दौड़ते हुए वहां से कमरे से बाहर चले गए। माता यशोदा उनका श्री कृष्ण का पीछा करती रही, इधर उधर भागे श्री कृष्ण। अंततः माता यशोदा उन श्री कृष्ण को पकड़ पाई जिनको चरण कमलों के अंगूठे के अग्र भाग के करीब भी बड़े बड़े योगी ज्ञानी इत्यादि नहीं पहुंच सकते हैं, जो कि अनेक जन्मों तक कड़ी तपस्या करते हैं। तो माता यशोदा ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया। माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखकर श्री कृष्ण और भी घबरा गए, आंख आंसुओं से भर गए, अपने माता से प्रार्थना करने लगे कि मुझे मारना नहीं। माता यशोदा ने कहा, तो क्यों मटकी मटका जो है तुमने तोड़ दिया? श्री कृष्ण कहने लगे, और नहीं तोड़ूंगा। फिर अपने पुत्र के भयभीत अवस्था को देखकर करुणा आई माता यशोदा को, छड़ी नीचे फेंक दी, परंतु सोचा कि इस नटखट और चंचल बच्चे को बांध के रखना ही उचित होगा, नहीं तो न जाने डर के मारे वो इधर उधर कहीं घर के बाहर चले जाएगा और कुछ हानि भी पहुंच सकती है। और वैसे भी इसकी शरारतों को थोड़े समय के लिए तो रोकना चाहिए, थोड़ा तो दंड इसे मिलना चाहिए। तो माता यशोदा ने अपने घर से एक रस्सी लाकर श्री कृष्ण को उखल से बांधना प्रारंभ किया, परंतु माता यशोदा ने देखा कि वो दो उंगलियां कम पड़ रही थी। एक के बाद एक अनेक रस्सियां वो लाती गई घर से, फिर भी वो रस्सी दो उंगली कम पड़ती जा रही थी। घर के रस्सियां जब खत्म हो गई, व्रज के अन्य गोपियों ने अपने अपने घरों से रस्सियां लाना शुरू कर दिया, फिर भी आश्चर्य की बात यह थी कि हर बार वो रस्सी दो उंगली कम पड़ रही थी। अब माता यशोदा आश्चर्यचकित हो गई और अपने विस्मित अवस्था में सोचने लगी, दो बहुत बड़े आश्चर्य की बातें हैं। एक आश्चर्य की बात तो ये है कि मेरा पुत्र इतना छोटा बच्चा है और उसकी कमर की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, केवल एक 2 फुट के रस्सी से बंधा जाना चाहिए ये छोटा सा कमर, परंतु जबकि मैंने 2 फुट से कहीं ज्यादा लंबाई के रस्सियों को लिया है, उनको जोड़ा है, फिर भी ये रस्सी कम पड़ रही है। यहां तक कि अब जो रस्सी मैंने बनाई है उसकी लंबाई लगभग 150 फुट की हो सकती है, फिर भी ये रस्सी कम पड़ रही है। ये पहले आश्चर्य की बात है। और दूसरे आश्चर्य की बात है कि हर बार जब मैं विविध लंबाई के रस्सियों को लेकर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हो तो हर बार दो उंगलियों से ही रस्सी कम पड़ रही है, तीन उंगलियों से नहीं, चार उंगलियों से नहीं, केवल दो उंगलियों से। इसलिए माता यशोदा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हो सकता है। वैसे देखा जाए तो माता यशोदा के मन में अब जिद आ गया था। जिद क्या था? जिद था कि किसी न किसी तरह से मुझे श्री कृष्ण के कमर के माप को लेना ही लेना है। मुझे एक बार तो पता चले कि मेरे पुत्र की कमर की चौड़ाई कितनी है, चाहे सारे ब्रज भूमि के रस्सियां लानी क्यों ना पड़े मुझे, लेकिन आज तो मैं इस जानकारी को प्राप्त कर ही लूंगी कि मेरे इस अद्भुत पुत्र की कमर की चौड़ाई कितनी है। तो माता यशोदा ऐसे दृढ़ता से एक के बाद एक रस्सियों को बांधती गई। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में प्रतियोगिता या स्पर्धा होती है। जैसे श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में वृंदावन में अनेक खेल खेला करते थे, इसमें कभी कुश्ती होता था, कभी चोर पुलिस खेलते थे, तो कभी तरह तरह के ऐसे खेल खेलते थे, और कभी श्री कृष्ण हार जाते थे, कभी जीत जाते थे। जब हार जाते थे या हारने वाले पक्ष में रहते थे तो हारने वाले पक्ष के जितने भी सदस्य थे सारे ग्वाल बालों को दंड मिलता था, जैसे कि उन्हें जीतने वाले पक्ष के जो ग्वाल बाल है उनको कंधों पे बिठाकर इधर उधर चलना पड़ता था, और जीतने वाले पक्ष के बच्चे हारने वाले पक्ष के बच्चों को घोड़े की तरह चलाते थे। कभी जब श्री कृष्ण ऐसे हारने वाले पक्ष में होते थे तो उनको भी बच्चों को कंधे पे उठाना पड़ता था और बड़े खुशी से उठाते थे। तो ऐसे स्पर्धाएं प्रतियोगिताएं प्रेम की स्पर्धाएं हैं। वैसे स्पर्धा जो है वो बराबरी के लोकों में होती है। यदि मान लीजिए एक बहुत छोटा सा बच्चा है, वो किसी बड़े पहलवान के साथ कभी कुश्ती करेगा, कोई मायने रखता है ऐसा कोई मल्लयुद्ध? जब दो पहलवान हो तो ठीक है, उनके बीच में कोई कुश्ती हो तो फिर कोई बात बनती है, लेकिन एक छोटा बच्चा हो और बड़ा सा पहलवान हो तो उनके बीच में कुश्ती मल्लयुद्ध करने का क्या मतलब होता है? तो भगवान की शक्ति कितनी है और अन्यों की शक्ति कितनी है, क्या इसमें कोई हम तुलना कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति असीमित है, अपार है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए इसे अचिंत्य शक्ति कहा जाता है। भगवान अपने अचिंत्य शक्ति का लेश मात्र इस भौतिक सृष्टि में प्राकट्य करते हैं, और इसी लेश मात्र शक्ति के प्रदर्शन से ये अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब भगवान के कला अर्थात विस्तार के विस्तार शेष अपने फणों के ऊपर सारे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं तो उन्हें ऐसे प्रतीत होता है कि ये मानो ये सरसों के बीज के समान हल्के हैं, और इससे भी भगवान की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये भी भगवान की शक्ति का लेश मात्र ही एक प्रदर्शन है। तो भगवान की शक्ति की गणना उसका विश्लेषण बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि हो सकता है कि भविष्य में ऐसे कोई बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक आ जाए जो आसमान में जितने तारे हैं उनको गिन सके, ये भी संभव नहीं है। परंतु ब्रह्मा जी ऐसे तर्क के लिए कह रहे हैं कि समझ लीजिए ऐसे हो भी जाए कोई वैज्ञानिक जो आकाश में जितने भी तारे हैं उन सबको गिन ले, या ऐसे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक आए जो ब्रह्मांड के अंदर जितने भी अणु हैं परमाणु उन सबको गिन ले, क्या ये संभव है? नहीं। फिर भी तर्क के लिए यदि हम विचार भी करें कि ऐसे कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति आके गिन भी सकता है सारे परमाणुओं को ब्रह्मांड के भीतर, फिर भी भगवान के ऐश्वर्य और इनके दिव्य गुणों को गिना नहीं जा सकता। यहां तक कि अनंत शेष भी अनादि काल से भगवान का गुणगान करते आए हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे, फिर भी भगवान के ऐश्वर्यों के वर्णन के और उनके गुणों के सीमा तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे शक्तिशाली असाधारण अचिंत्य शक्ति से युक्त श्री कृष्ण अब किसी से पुष्टि करेंगे, और वो भी एक छोटा बच्चा, कोई मतलब है इसमें? लेकिन जब ये प्रेम का संबंध होता है, विशेष करके वृंदावन, तो इसका बहुत गहरा मतलब होता है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रतियोगिता में आते हैं तो ये प्रतियोगिता केवल शक्ति की नहीं होती है, बल्कि बुद्धि की नहीं होती है, ये प्रतियोगिता प्रेम की होती है। और कभी कभी भगवान हार जाते हैं क्योंकि उनके भक्तों का प्रेम भगवान के प्रेम को जीत लेता है। तो जब भगवान अपने ग्वालवाल मित्रों के साथ खेलते खेलते हार जाते हैं, हम समझ सकते हैं कि वो अपने भक्तों के प्रेम के सामने हार गए हैं, इसलिए उनके कंधों पर ले लेते हैं, कभी कभी उनके चरण मालिश करते हैं क्योंकि वो हार गए हैं। ठीक उसी तरह से यह माता यशोदा के साथ जो लीला चल रही है, ये भी एक स्पर्धा समझ लीजिए, प्रेम की स्पर्धा चल रही है। माता यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है श्री कृष्ण को रस्सी से, और शुरुआत में श्री कृष्ण बंधना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे, भगवान की विभूति शक्ति जो कि उनके सत्य संकल्प शक्ति से प्रेरित थी, वो प्रविष्ट हुई भगवान श्री कृष्ण में, जिसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा कि मैं बंधना नहीं चाहता क्योंकि मुझे और माखन चोरी करनी है, मेरे मित्रों के साथ खेलना है, इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ये रस्सी दो उंगली कम पड़ती रही हर बार। तो एक ओर भगवान की अचिंत्य शक्तियां काम कर रही थी ताकि वो रस्सी हमेशा दो उंगली कम पड़े और माता यशोदा असफल होती रही, और दूसरी ओर माता यशोदा हार नहीं मान रहे थे। यह है भक्तों का जिद। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों का जिद ऐसे होता है कि यद्यपि कितने सारे बंधन आते हैं, रुकावटें आती हैं, अड़चनें आती हैं भक्ति मार्ग में, तरह तरह के कष्ट आते हैं, कभी अपमान होता है, कभी आर्थिक नुकसान होता है, कभी शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, कभी संसार के विषयों के प्रति आकर्षण होता है, कभी कभी पथ भ्रष्ट हो जाता है भक्त थोड़े समय के लिए, फिर पुनः भक्ति में आ जाता है। तो भक्ति की दृढ़ता ये भक्त में रहती है। तो भक्त इतना जिद्दी रहता है कि किसी भी हालत में भगवान की सेवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और माता यशोदा ये तो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण की। यदि श्री कृष्ण ने ठान लिया कि मैं बंधना नहीं चाहता, तो माता यशोदा ने ठान लिया कि मैं बांध कर ही रहूंगी। अब इस स्पर्धा हो गई माता और बच्चे में, दोनों भक्तों में, ऐसी सुंदर स्पर्धा प्रतियोगिता जिसको देखने के लिए सारे ब्रज की गोपियां इकट्ठे हो गईं और अंततः माता यशोदा सफल हो गईं। माता यशोदा की जीत हो गई, क्योंकि माता यशोदा का प्रेम जो है वो श्रेष्ठ था। माता यशोदा जान गई कि मेरा बच्चा किसी भौतिक युक्ति से बंधा नहीं जा सकता है। अनेक गोपियों ने भी उनको मना करने का प्रयास किया, ठीक है यशोदा, अब इतना प्रयास कर लिया, इतने रस्सियां लाल लाकर पसीने छूट गए तुम्हारे, समय भी बीत रहा है, फिर भी ये बच्चा बंध नहीं रहा है, अब छोड़ दो, चलो। डांट हो गई इसकी, लेकिन माता यशोदा ने नहीं माना। तो ये है उनकी दृढ़ता, जिद, भक्ति का जिद, और इसलिए वो करते रहे करते रहे। और इस तरह से अंत में भगवान श्री कृष्ण को हार मानना ही पड़ा। इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति हार जाता है किसी प्रतियोगिता में, तो उसे बहुत दुख होता है। जीतने वाले को सुख होता है, हारने वाले को दुख होता है। और इस दुनिया में देखते हैं, जब प्रतियोगिता होती है कोई, अनेक दल होते हैं, अंततः एक ही दल जीतता है, सही है ना? बाकी सारे हार जाते हैं। यदि 20 दल हैं, एक ही जीतेगा, एक ही को स्वर्ण पदक मिलेगा, बाकी 19 हार जाते हैं। इससे हम जान सकते हैं कि इस भौतिक दुनिया में दुखी लोगों की संख्या सुखी लोगों की संख्या से बहुत ज्यादा अधिक है, है ना? तो खैर, दुखी लोग अक्सर रहते हैं जो हार जाते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण जब कोई स्पर्धा में भाग लेते हैं अपने भक्तों के साथ में, और जब वो हार जाते हैं तो बहुत आनंद मिलता है उनको, क्योंकि वो अपने भक्तों के सामने हार रहे हैं, और इसमें बहुत सुख मिलता है भगवान श्री कृष्ण को। बल्कि कभी कभी भगवान हारना चाहते हैं। प्रभुपाद जी एक बार बताते, एक उदाहरण दिए थे एक बार, कि जैसे कभी कभी एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे के साथ कुश्ती खेलता है घर में। वो आदमी तो बहुत बड़ा आदमी है, 6 फुट लंबा ऊंचा चौड़ा आदमी है, बच्चा इतना छोटा है। बच्चा कहता है हमसे कुश्ती करो, तो पिता करते हैं कुश्ती, लेकिन पिता क्या अपनी सारी ताकत लगा के कुश्ती करेंगे? नहीं, कुश्ती करते हैं, और अंत में होता क्या है कि बच्चा जीत जाता है। बच्चा पिता को गिरा देता है जमीन के ऊपर, और पिता भी गिर भी जाता है आवाज करके, नहीं नहीं और मत, नहीं मारो और नहीं मारो कहता है, और बच्चा कहे हार मान लिया, पिता हाँ हार मान लिया, हार मान लिया। फिर बच्चा पिता के सीने के ऊपर जाके बैठता है, मैं जीत गया। यदि पिता के साथ ऐसे कहीं बाहर हुआ होता किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, और पिता हार गया होता, तो बहुत बुरा लगा होता उसे, क्योंकि इतना अपमान हुआ होता सबके सामने ऐसे हार गए। लेकिन अब अपने बच्चे के सामने जब हार जाता है तो इतना खुश होता है कि बच्चे की प्रशंसा करता, वाह तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी अपने भक्तों के साथ ऐसे लीला करते हैं, प्रेम के कारण वो हार जाते हैं। तो ये है भगवान के गुण, और भगवान और उनके भक्तों के बीच में जो संबंध है उससे केवल आनंद ही आनंद उत्पन्न होता है। भगवान की कई शक्तियां हैं, परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, अनेक शक्तियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रधान शक्ति कौन सी है उनकी, जो समस्त शक्तियों के बीच में राजा माना जाता है, वो है कृपा शक्ति भगवान की। भगवान जब कृपा करना चाहते हैं तो वो कृपा शक्ति अन्य शक्तियों को हरा देती है, भगवान की शक्तियों को भी। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा अब बहुत परिश्रम करके थक गई हैं, फिर भी रस्सियां बांध बांध के चेष्टा कर रही हैं, तो भगवान की कृपा शक्ति खुद का उद्भव होता है। और उस समय श्री कृष्ण का हृदय मक्खन की तरह पिघल जाता है। और जब कृपा शक्ति का प्राकट्य हो जाता है तो उस समय ये विभूति शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति, इनको सब दूर भाग जाना पड़ता है, उनके लिए कोई स्थान नहीं होता है, फिर केवल भगवान की कृपा शक्ति रहती है। और फिर भगवान कृपा कर देते हैं भक्त के ऊपर और फिर भक्त जीत जाता है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि जो दो उंगलियां हैं जिनसे कि रस्सी बार बार कम पड़ रही थी, वो दो चीजों के प्रतीक हैं। एक है भक्तों का प्रयास भगवान को प्राप्त करने के लिए, परिश्रमम, इसको भक्त निष्ठा भी कहते हैं, भक्त का जिद, भक्त की सेवा, भक्त का परिश्रम। और दूसरी जो उंगली है वो प्रतीक है भगवान की कृपा का, कृष्ण कृपा। कृष्ण कृपा इसको स्वनिष्ठा कहते हैं, भगवान की निष्ठा, भगवान की जो स्थिरता है वो कृपा रूप में जो प्रकट होती है जिसे स्वनिष्ठा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा या स्वनिष्ठा और साथ साथ में भक्त का परिश्रम या भक्त निष्ठा, दोनों जब हो जाते हैं तो फिर भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे जब भक्त के हृदय में ये निष्ठा होती है और भगवान का हृदय भी कृपा शक्ति से भर जाता है, तो फिर श्री कृष्ण बंधे जाते हैं। और इस दामोदर लीला के माध्यम से श्री कृष्ण सारे दुनिया को यही दिखाना चाहते हैं कि केवल प्रेम से मैं बंधा जा सकता हूं, और कोई रास्ता नहीं है मुझे जीतने का या मुझे बांधने का। तो आइए अब हम दामोदर अष्टकम के तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं, जिसमें सत्यव्रत मुनि इन सुंदर लीलाओं का गुणगान करते हैं।
इति दृक्स्वलीला भीरानंद कुंडे सघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तम्। पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे
सत्यव्रत मुनि कहते हैं। इति मतलब ये दामोदर लीला, क्योंकि पहले दो श्लोकों में दामोदर लीला का वर्णन कर चुके हैं। इति दृक् स्वलीला भी भगवान श्री कृष्ण अपनी इस तरह के बाल लीलाओं के द्वारा अपने गांव गोकुल के निवासियों को आनंद के एक कुंड में डुबा देते हैं, अर्थात उनको दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। और इस तरह से वो घोषणा करते हैं, मान लीजिए, या प्रकट करते हैं उन भक्तों को जो कि ऐश्वर्य भाव में वैकुंठ स्वरूप में भगवान श्री नारायण की सेवा करना चाहते हैं, चतुर्भुज ऐश्वर्यों से युक्त, और जो इस तरह की भावना से और सेवा से आसक्त हैं, ऐसे भक्तों को मानो भगवान प्रकट करा रहे हैं या प्रकाशित कर रहे हैं कि मैं इस तरह के प्रेम से इतना नहीं जीता जाता जितना कि मैं उस प्रेम से जीता जाता हूं जो कि स्वाभाविक है और जिसमें तनिक भी ऐश्वर्य आदि का मिलावट नहीं है। अर्थात जिस प्रेम में भगवान का भक्त भगवान को भगवान नहीं मानकर भगवान को अपना मित्र प्रेमी पुत्र आदि मानकर सेवा करता है, ऐसे प्रेम को भगवान श्री कृष्ण बहुत पसंद करते हैं, ऐसे प्रेम से वो आकर्षित होते हैं। इसलिए सत्यव्रत मुनि कहते हैं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। तो इसलिए मैं बड़े प्रेम से सैकड़ों बार पुनः पुनः ऐसे श्री दामोदर का को नमन करता हूं। स्वघोषम, घोष मतलब ग्वाले को भी घोष बोलते हैं, गोष्ठ घोष। स्वघोष मतलब गोकुल के जितने भी निवासी थे सारे गोप गोपीगण थे, स्वघोषम भगवान के निजी धाम के निवासी। तो ऐसे स्वघोषम जितने भी उनके पार्षद थे गोकुल में रहने वाले, आनंद कुंडे निमज्जन्तम, उनको आनंद दिव्य आनंद के कुंड में डुबो रहे हैं वो ऐसे लीलाओं के द्वारा। हम कल्पना मात्र कर सकते हैं कि जब भगवान और यशोदा माता के बीच में ये लीला चल रही थी तो माता यशोदा को और अन्य जो गोपियां इस सुंदर दृश्य को देख रही थीं, कितना दिव्य आनंद का अनुभव हुआ होगा, शायद हमारे लिए कल्पना करना संभव नहीं है। ऐसे आनंद जब होता है तो दुनिया की परवाह कौन करेगा, ये संसार के तथाकथित सुख की परवाह कौन करेगा, ये सब तुच्छ प्रतीत होगा, सड़क में पड़े हुए तृण के बराबर प्रतीत होगा। इसलिए आनंद कुंडे निमज्जन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु, जो लोग भगवान के ऐश्वर्य रूप का ज्ञान रखते हैं अपने हृदय में और इसी रूप को इसी भाव को स्वीकार करते हैं, विशेष करके ऐश्वर्यशाली भगवान जो बहुत शक्तिशाली हैं इत्यादि, तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण बताना चाहते हैं दामोदर लीला आदि ऐसे अन्य लीलाओं के द्वारा। भक्ते जितत्वम, मैं जीता जा सकता हूं तो ऐसे भक्ति से, कैसे भक्ति, जो कि ये माता यशोदा अब प्रकट करा रही है, जिसमें माता यशोदा मुझे डांट रही है, माता यशोदा मुझे बांध रहना चाहती है, माता यशोदा की कोई भावना नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान है और इसलिए उनका प्रेम इतना तीव्र है, इतना सर्वोच्च है कि अन्य वैकुंठ के निवासी भी इसकी बराबरी तनिक भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां श्री कृष्ण कहते हैं भक्तैर्जितत्वम् आख्यापयन्तम् का तात्पर्य है कि भगवान ने वृंदावन के प्रेम के लक्षणों को सारी दुनिया को देखने के लिए अब प्रकट किया है ताकि स्पष्टीकरण हो, सब लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़े कि वृंदावन का प्रेम कितना ऊंचा है, कितना शुद्ध है, कितना मधुर है। इसलिए सत्यव्रत मुनि बार बार ऐसे ही कहते हैं कि मैं अभी नमन करता हूं इस दामोदर के चरण कमलों में। तो इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि गुण विशेष भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं और इसके द्वारा इन गुणों के कारण ही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ये भक्तों की बहुत विशेष बात है, इसलिए यहाँ पर क्षमा कीजिए, कृष्ण की बहुत बड़ी बड़ा एक गुण है। इसलिए इस 19वें श्लोक में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 9वें अध्याय में फिर सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक कहते हैं,
एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं शेश्वरं वशे।
एवं इस तरह से संदर्शिता प्रदर्शित हुआ था अंग हे महाराज परीक्षित हरिणा श्री हरि या श्री कृष्ण के द्वारा। क्या प्रदर्शित हुआ था राजा परीक्षित कृष्ण के द्वारा? भृत्यवश्यता, भगवान श्री हरि की भृत्यवश्यता। भृत्य अर्थात सेवक या भक्त। तो इस दामोदर लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक बहुत विशेष गुण के का प्रदर्शन किया है और वो प्रदर्शन है भृत्यवश्यता का, कि मैं मेरे भक्तों के वशीभूत हो जाता हूं। ये बहुत बड़ा गुण है भगवान श्री कृष्ण का, अपने सेवकों के अधीन हो जाना। ये साधारण दुनिया में नहीं पाया जाता है। जब कोई मालिक होता है और उसके अनेक सेवक होते हैं तो ऐसे कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि मालिक अपने ही सेवक की सेवा करता है या अपने ही मालिक का सेवक वो बन, अपने ही सेवक का सेवक बन गया है। ऐसा नहीं दिखाई पड़ता दुनिया में, परंतु ये भगवान का एक दिव्य गुण है भृत्यवश्यता। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं और अर्जुन के आदेश का पालन करते रहे। अर्जुन ने कहा बाएं चलो तो बाएं चले, दाहिने चलो तो दाहिने चले, तेज गति से चलो, धीरे चलो, रुक जाओ। तो जैसा अर्जुन कहते थे वैसा श्री कृष्ण करते थे, आदेश का पालन करते थे। तो वैसे जब भगवान ऐसे भृत्यवश्यता के लक्षण या गुण को प्रकट करते हैं, ये कोई उनका दोष नहीं है, बल्कि उनके चरित्र का सबसे अनमोल और सुंदर आभूषण है। एक साधारण व्यक्ति अपने सेवक की सेवा करने लगे तो लोग कहेंगे भाई कैसे व्यक्ति हो। और ऐसे भी होगा कि सेवक के मन में अपने मालिक के प्रति जो सम्मान है वो खत्म हो जाएगा, फिर वो अपनी सेवा ठीक से नहीं करेगा। ऐसे भी होता है दुनिया में, परंतु भगवान श्री कृष्ण को अपने सेवक की सेवा करने में लज्जा नहीं होती। इस भौतिक जगत में किसी को भी किसी दूसरे व्यक्ति की सेवा करने में लज्जा होती है, अच्छा नहीं लगता है। अपने मालिक की सेवा करने में भी अच्छा नहीं लगता तो अपने सेवक की क्या सेवा करेगा। परंतु न केवल श्री कृष्ण सेवा करना पसंद करते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वो अपने सेवकों की सेवा करना पसंद करते हैं और लज्जित नहीं होते हैं, सबके सामने करते हैं ताकि सारी दुनिया देखे कि देखो मैं मेरे भक्तों का दास हूं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने न केवल एकांत में अर्जुन की सेवा की, परंतु मुख्यतः रणभूमि पर जबकि करोड़ों सैनिक वहां उपस्थित थे, सबके सामने उन्होंने पार्थ सारथी बनकर घोषणा की कि देखो मैं मेरे भक्तों का दास हूं। भगवान ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी अपने भृत्यवश्यता का गुण का प्रदर्शन किया। तो भृत्यवश्यता का लक्षण या गुण अवश्य कुरुक्षेत्र में, मथुरा में, द्वारका में भी पाया जाता है, परंतु जिस गहराई में, जिस तीव्रता से और जितने माधुर्य से ये भृत्यवश्यता का गुण वृंदावन में प्रकट होता है, ये और कहीं नहीं प्रकट होता। इसलिए वृंदावन में भित्य वश्यता का प्राकट्य या प्रदर्शन ये अतुलनीय है, अद्वितीय है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता। और भी आश्चर्यजनक बात क्या है इस चीज में, यदि कोई एक साधारण व्यक्ति अपने सेवक की सेवा करे, फिर भी चलो हम मान भी सकते हैं कि बहुत दयालु व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, जिनकी सेवा बहुत बड़े बड़े लोग, दूसरे लोग कर रहे हो, और वो व्यक्ति किसी साधारण सेवक की जाके सेवा करे, तो आश्चर्य की बात हो जाएगी। तो सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं, स्ववशेन, भगवान श्री कृष्ण तो केवल अपने ही निजी वश में रहते हैं, भगवान और किसी के वश में नहीं होते हैं, यह तत्व ज्ञान है। स्वाश्रयाश्रय, स्व आश्रय, अपने ही आश्रय हैं भगवान श्री कृष्ण। हमें हर समय किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। अब बैठने के लिए जमीन का आश्रय चाहिए, इसलिए पहले मंजिल पर यहां पर बैठे हैं इस मंदिर में, तो जमीन है इसलिए आश्रित है, हम सही तरह से बैठे हैं। ये टूट जाए तो सीधा नीचे चले जाएंगे, हमारा आश्रय खत्म हो जाएगा, तो जमीन हमारा आश्रय बन जाएगा। भूकंप हुई, पृथ्वी फट गई और नीचे चले जाएंगे, आश्रय फूट छूट गया हमारा। हर अवस्था में हमारे लिए कोई आश्रय चाहिए जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हमसे भिन्न है। परंतु भगवान श्री कृष्ण को ऐसे किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ही निजी आश्रय हैं, अपने ही वश में है वो, ये तत्व है। इसलिए स्ववशेन अपि, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपने ही वश में रहते हैं, और साथ साथ में कृष्णेन यस्य इदं स ईश्वरं वशे, बड़े बड़े इस ब्रह्मांड के जो लोकपाल हैं, जो ईश्वर हैं, जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र देव हैं, वो सब श्री कृष्ण के वश में हैं, वो सब श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं, श्री कृष्ण से भयभीत रहते हैं। और ऐसे श्री कृष्ण जिनकी सेवा में ब्रह्मांड के बड़े बड़े ईश्वर भी तत्पर रहते हैं, वो श्री कृष्ण अब एक छोटे से गांव में, जो कि जंगल के पास में है, वनों के बीच में है, माता यशोदा उनके इस तरह से वश में आ गए हैं कि इसकी कोई तुलना नहीं है। कितना चमत्कार है ये। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के भित्य वश्यता का गुणगान कर रहे हैं। ये वास्तव में बहुत अद्भुत बात है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों की कोई सीमा नहीं है, और जितने छोटे अपने निम्न स्थान में भगवान अपने आप को ले आते हैं अपनी लीलाओं में, उतनी ज्यादा मधुर उनकी लीलाएं बनती हैं। जितना ज्यादा भगवान श्री कृष्ण अपने भगवत्ता का प्रदर्शन करते हैं, उतना अच्छा है, ठीक है। ये भी भक्तों के लिए भक्ति स्रोत है। फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण अपने आप को निम्न से निम्न श्रेणी में ले जाकर अपने भक्तों के इस तरह वश में हो जाते हैं कि वो कठपुतली बन जाते हैं उनके हाथ में, तब भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य असीमित रूप से बढ़ जाता है। तो एक ओर भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि बड़े बड़े ईश्वर भी उनके वश में हैं, और दूसरी ओर माता यशोदा के वश में वो आसानी से आ गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं, वो विरोधाभासों के भंडार है। विरोधाभास कि एक चीज है भगवान में, उससे बिल्कुल उल्टी चीज भी भगवान में विद्यमान है। इसलिए परम सत्य भगवान को समझना बड़ा मुश्किल है। जो साधारण बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करेगा, ऐसे विरोधाभास का सामना जब करता है तो भ्रमित हो जाता है, समझ नहीं पाता है भगवान को कि ऐसे कैसे हो सकता है। परंतु जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को मानते नहीं हैं, तब तक हम इन विरोधाभासों का समन्वय नहीं कर पाएंगे। इसलिए शुद्ध भक्तों के द्वारा ही ऐसे समन्वय संभव है। ईश उपनिषद में बताया गया है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तद एजति तद न एजति, वो चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, कोई चल रहा है और नहीं चल रहा है, दोनों एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? भगवान के साथ हो सकता है। तदंतरस्य सर्वस्य या तद दूरे तद्वंतिके, वो दूर भी है पास भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान के लिए संभव है। वो दूर अपने गोलोक वृंदावन धाम में बैठे हैं, साथ में हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी बैठे हैं, साथ साथ में तदंतरस्य सर्वस्य, वो हर चीज के अंदर हैं, साथ साथ में तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, हर वस्तु के बाहर भी हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? भगवान के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, वो हर चीज के अंदर है, हर चीज के बाहर भी है। समस्त ब्रह्मांड भगवान में स्थित है, भगवान के उदर में है। जैसे कि मार्कंडेय ऋषि ने देखा, और वही ब्रह्मांड वही भगवान जिनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास करते हैं, वो अब माता देवकी के गर्भ में या उदर में आकर रहे। कितने चमत्कारी की बात है। क्या साधारण बुद्धि से ऐसी चीजें समझी जा सकती है? नहीं, साधारण बुद्धि से नहीं। इसलिए दिव्य चक्षु चाहिए, शास्त्र चक्षु, भक्ति के नेत्र चाहिए, श्रद्धा के आंखें चाहिए समझने के लिए। ब्रह्म संहिता में भी भगवान या की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, एकोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदंड चयाय दन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो कहते हैं एक अपि, भगवान एक हैं, परम सत्य हैं, अद्वितीय हैं, कोई दूसरा भगवान नहीं है, एक ही है परम सत्य। यद्यपि भगवान एक ही हैं, उनकी शक्तियां अनेक हैं, यह शक्ति ही अस्ति, और ये शक्तियां भी भगवान से अभिन्न हैं। रचयितुं जगत अंड कोटिं, और वो लीला करते हैं अपनी शक्ति के साथ, अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उनका सृजन करते हैं, और साथ साथ में जगदंड चयाय दंतः। जगदंड मतलब ब्रह्मांडों को जगदंड कहते हैं, चया मतलब बहुत सारे, जगदंड चयायत अंतः। तो ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं, वो सब भगवान के अंदर हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं। इसके बाद भी अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, फिर भी भगवान हर एक ब्रह्मांड के भीतर तो है ही, हर एक परमाणु के अंदर भी स्थित हैं भगवान। देखिए कितनी अचिंत्य बात है। कितनी भ्रमित कराने वाली बात है। समस्त ब्रह्मांड भगवान के अंदर है और भगवान हर एक परमाणु के अंदर है। सोच विचार करने से सर चकरा जाता है। ये है परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। तब जब लोग भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की निंदा करते हैं, उनको ये तत्व पहले समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है और उनकी क्या शक्ति है, क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है उनका, तब जाके उन्हें लीला समझने का प्रयास करना चाहिए। वैसे और कितने सारे विरोधाभास हैं भगवान के लिए। एक तो हम कह ही चुके हैं यहां पर सुखदेव गोस्वामी कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उनके ईश्वरों के साथ, लोकपालों के साथ में नियंत्रित करते हैं, उनको वश में रखते हैं, और वही श्री कृष्ण आज माता यशोदा के हाथ में कठपुतली बन गए, उनके वश में हो गए हैं। दूसरी बात, उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण एक स्थान में भी रह सकते हैं और मन की के गति से भी तेज भाग दौड़ सकते हैं। दूसरी ओर देखा जाता है लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विद्यमानम, अनंत कोटि लक्ष्मी देवियां हैं वैकुंठ जगत में जो कि श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहती हैं। भगवान के पास कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं है, फिर भी एक दरिद्र व्यक्ति की तरह वो जाके चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं। ये भी एक विरोधाभास। देखिए कितना अद्भुत है भगवान का चरित्र। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे अनेक विरोधाभास भगवान के चरित्र में पाए जा सकते हैं जो अभक्तों को भ्रमित करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे और थोड़े विरोधाभासों का उदाहरण देते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो आप्त काम है, अर्थात पूरी तरह से वो संतुष्ट है अपने आप ही, फिर भी वो भक्तों का प्रेम चाहते हैं। ये भी एक अचिंत्य बात है। साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण तो शांति और सत्व के मूर्तिमान स्वरूप हैं, फिर भी वो कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं। वो तो सांद्रानंद के स्वरूप हैं, घने दिव्य आनंद के स्वरूप है श्री कृष्ण, फिर भी जब श्रीमती राधा रानी रासलीला छोड़ के या कहीं स्थान छोड़ के चली जाती हैं तो श्री कृष्ण शोक करते हैं। तो ऐसे है परम सत्य श्री कृष्ण। साधारण बुद्धि से इनको समझा नहीं जा सकता, केवल भक्ति के नेत्रों से भगवान को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो खैर सुखदेव गोस्वामी ऐसे सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं और गुणगान करते हैं भगवान श्री कृष्ण का। और फिर एक और एक महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं वो, जिसमें कि वो यशोदा माता और नंद महाराज के वात्सल्य प्रेम का गुणगान करते हैं। नैनं विरिञ्चम भवो न शीर्यप्यंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न इमं, मतलब ये जो ऊंचा स्थान है जो कि माता यशोदा को प्राप्त हुआ, प्रसादम लेभिरे गोपी, प्रसादम अर्थात कृपा, लेभिरे मतलब प्राप्त हुआ, गोपी अर्थात यशोदा, तो जो प्रसाद जो कृपा माता यशोदा को प्राप्त हुआ, न इमं, ये जो कृपा है वो अन्यों को प्राप्त नहीं हुआ। और वो कौन है अन्य? विरिंच है, विरिंच अर्थात ब्रह्मा जी, न भव है, ये शिव जी का और एक नाम है भव, और फिर न श्री अप्यंग संशया, अन्न संशया मतलब अर्धांगिनी। यद्यपि लक्ष्मी देवी भगवान की अर्धांगिनी है, फिर भी उनको ऐसी कृपा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त नहीं हुई जो कि माता यशोदा की को प्राप्त हुई। यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। तो फिर शिव जी और ब्रह्मा जी की बात तो दूर है, और शिव जी ब्रह्मा जी की बात दूर है तो हम साधारण भक्तों की बात और कितनी दूर है। यह भगवान श्री कृष्ण को विमुक्तिदात कह के संबोधित करते हैं सुखदेव गोस्वामी। विमुक्ति अर्थात विशेष मुक्ति। तो किस तरह की विशेष मुक्ति है ये? मुक्ति हिंदात हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। तो जब जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है तब वो मुक्त कहलाता है। तो जीव का स्वरूप क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास है जीव, इसलिए जीव का स्वरूप है कि वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करे। तो ये प्रेम जीव का स्वरूप है। और जब कोई जीव प्रेमा भक्ति की अवस्था में स्थित हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये विमुक्ति की अवस्था है, विशेष मुक्ति की अवस्था है। अन्य भी तरह तरह की मुक्तियां हैं, जैसे कि निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना। ऐसी मुक्ति तो तनिक भी भक्त लोग चाहते तो नहीं है, लेकिन भक्तों को और विशेष करके वृंदावन के भक्तों को ऐसे विशेष मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो श्री कृष्ण ही हैं जो ऐसे विशेष मुक्ति अपने प्रेमी भक्तों को प्रदान कर सकते हैं। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को कहते हैं ये देखकर कि माता यशोदा की भक्ति कितनी विशेष है जो कि श्री कृष्ण भी उनके वश में आ गए हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी समझते हैं कि यशोदा माता नंद महाराज से भी ज्यादा भाग्यशाली है। नंद महाराज ने आके बांधा नहीं श्री कृष्ण को, माता यशोदा ने बांध लिया। कल हम संक्षेप में चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के भृत्य वत्सता का गुण प्रदर्शित होता है वृंदावन में, जब गोपी आके कोई मिठाई देते हैं श्री कृष्ण को और कहते हैं कि श्री कृष्ण थोड़ा नृत्य करो। फिर मिठाई की लालच में, और क्योंकि बड़े प्रेम से गोपियों ने कहा है नृत्य करो, तो श्री कृष्ण नृत्य कर लेते हैं। फिर गोपियां कहते हैं शाबाश बहुत अच्छा किया, अब और एक मिठाई लो, अब कोई गाना गाओ। फिर श्री कृष्ण गीत गाना शुरू करते हैं। कभी कभी उनके जो वरिष्ठ हैं गोप गोपियां श्री कृष्ण को कोई आदेश देते हैं कि अरे श्री कृष्ण वहां जाके मेरा पुस्तक तो ले आओ। या एक बार श्री कृष्ण को आदेश दिया नंद महाराज ने, मेरे पादुकाओं को ले आओ। तो श्री कृष्ण पहले उठाने गए, उठा नहीं पाए, बड़े मुश्किल से उठाया दोनों पादुकाओं को और अपने सर पे उठा के सर पे रख के वो लेकर आए। कभी कभी जब श्री कृष्ण किसी भारी वस्तु के पास जाते जिसको उठाने के लिए या लाने के लिए गोपियों ने कहा था, तो अपने बाल शक्ति का प्रयोग करके उठा नहीं सकते हैं, लेकिन सबके सामने अपमानित नहीं होना चाहते हैं, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि मेरी शक्ति बहुत ज्यादा है। तो जब उठा नहीं पाते हैं तो अपने बगल में ऐसे आवाज करते हैं कि नहीं सोचना नहीं कि मैं कमजोर उठाऊंगा, देखो जरा। तो ऐसे जब दृश्य गोपियां और गोपकर देखते हैं तो निमज्जन्तम् आनंद कुंडे, आनंद के सागर में डूब जाते हैं ऐसे लीलाओं को देखकर। इसलिए सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा की ऐसी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी सुंदर ढंग से इसी बात को अपने तात्पर्य में आगे बढ़ाते हैं कि कैसे यद्यपि लक्ष्मी देवी सदैव संग करते हैं भगवान का, सेवा करते हैं चरण कमलों की, फिर भी उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, ये कृपा प्राप्त नहीं होती जो कि माता यशोदा को मिली। और यहाँ पे तीन बार न कहा गया है, न इमं विरिंचो, न भवो, न श्री। तो तीन बार ऐसे न न न कहने का तात्पर्य है कि हम सुखदेव गोस्वामी जोर देना चाहते हैं कि माता यशोदा का स्थान ब्रह्मा जी जैसा नहीं है, शिव जी जैसा नहीं है, लक्ष्मी देवी जैसा भी नहीं है, कोई माता यशोदा की तुलना नहीं कर सकता है, भले वो ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी जी भी क्यों ना हो। प्रभुपाद जी अंत में यहां तात्पर्य में बताते हैं कि माता यशोदा ये नित्य सिद्ध भक्त हैं और भगवान के लादनी शक्ति के विस्तार हैं। तो माता यशोदा को जीवात्मा नहीं है हमारी तरह है, इसलिए हम कभी माता यशोदा नहीं बन सकते हैं, उनके पद चिन्हों में अवश्य हम चल सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण सुंदर श्लोक पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये सारे श्लोक जो हैं, पहले दो श्लोक अभी जो हमने गाया था, ये श्लोक नेमं विरिंचो न भवो, और साथ साथ में इसके पहले भी एक श्लोक बताया था नंदः किं अकरोत् ब्रह्मन्, वो दूसरा श्लोक, और ये तीसरा जो अब पाठ करने जा रहे हैं, ये वात्सल्य रस के वर्णन में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी इन तीन श्लोकों का उच्चारण कई बार किया चैतन्य चरितामृत में। नायं सुखापु भगवान देही नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्मभूतानां यथा भक्तिमतां इह। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा जैसे भक्तों के द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाते हैं उनके शुद्ध प्रेम के कारण, परंतु वो इतने आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं उन लोगों के लिए जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, योग मार्ग में चलते हैं, वृंदावन के निवासियों के भक्त पद चिन्हों में नहीं चलते हैं, उनके लिए भगवान को इस तरह प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में नित्य सिद्ध भक्त और साधन सिद्ध भक्तों में भेद करते हैं कि नित्य सिद्ध भक्तों के भक्ति का जन्म किसी समय नहीं होता है, वो पहले से ही सिद्ध हैं, और साधन सिद्ध भक्त वो होते हैं जो साधन भजन करके भक्तों के संग में भक्ति में सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो खैर ऐसे माता यशोदा के ऊपर कृपा प्राप्त की, बंधे गए, माता यशोदा जीत गई, फिर माता यशोदा को बहुत सारे काम तो थे, बांध कर वो चली गई दूसरी जगह। श्री कृष्ण ने देखा कि अब मैं अकेले हूं, अब मस्ती करनी चाहिए, अब मैं थोड़ी दिन भर यहां बंधा रहूंगा, मैं भी कितना व्यस्त हूं, मैं भी थोड़ी कोई काम, मेरे कितने काम पड़े हैं, मेरे कितने शरारतें और करनी है, कितनी चोरी करनी है, क्या कितना उत्पात मचाना है। तो उन्होंने सोचा, अच्छा हाँ, माता यशोदा ने बांध लिया है मुझे उखल से, तो कोई बात नहीं, उखल खींच के चले जाता हूं। अब ये उखल इतना भारी था, एक छोटा बच्चा कैसे इसको खींच के ले जा सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कोई कम तो नहीं है। उन्होंने आसानी से उखल को गिरा दिया और उखल को खींचते खींचते घसीटते घसीटते जमीन पर ले गए। श्री कृष्ण अपने तलवों पर, अपने घुटनों पर चल रहे थे जमीन के ऊपर, पीछे उखल को खींचे जा रहे थे और थोड़ी दूरी में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उन्होंने देखा कि दो यमल जो अर्जुन वृक्ष हैं, यमल अर्जुन और श्री कृष्ण जान पाए कि पहले किसी पूर्व युग में ये कुबेर के पुत्र हुआ करते थे और श्री कृष्ण ने सोचा कि इनका उद्धार मुझे करना चाहिए। तो परीक्षित महाराज जी तो कथा सुन रहे थे तो उन्होंने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसे कैसे हुआ कि नल कुंवर और मणिग्रीव यहां पेड़ बन गए, कि उन्होंने ऐसे क्या घोर पाप या अपराध किया था जिसके द्वारा नारद मुनि ने उनको ऐसा श्राप दे दिया कि वो पेड़ बन गए। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने उनका इतिहास का वर्णन करना शुरू किया, बताया कि ये दो नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र थे और क्योंकि यक्षगण जो होते हैं वो शिवजी के उपासक होते हैं, शिवजी के निकट होते हैं, पास में रहते हैं, यक्ष लोग जो है कैलाश के पास में है, तो इसलिए कैलाश के निकट में वहां पे सुंदर जो उद्यान हैं, नदियां हैं इत्यादि, वहां पे वो रमण करते थे और विशेष करके मंदाकिनी गंगा वहां से बहती थी। ऊपरी लोकों में गंगा को मंदाकिनी कहते हैं, यहाँ पे गंगा और पाताल लोक में भोगवती, तो ऐसे जल में वो स्नान कर रहे थे, नग्न अवस्था में थे और उनके साथ में कई देवलोक की स्त्रियां भी थीं, उनके भी वस्त्र ठीक ठाक नहीं थे और नारद मुनि दैव से उस स्थान से गुजर रहे थे। जैसे ही नारद मुनि को आते हुए देखा, उन स्त्रियों ने तो अपने शरीर को ढक लिया, परंतु ये दो नल कुंवर और मणिग्रीव इतने उन्मत्त अवस्था में थे, वारुणी द्रव्य का सेवन करने के कारण कि उनके होश ठिकाने नहीं थे, उन्होंने अपने आप को ढका नहीं, नारद जी के सामने भी वैसे के वैसे रहे। तो नारद जी ने देखा कि अरे इनका पतन इतना हो गया, इतने घोर अंधकार में है ये दोनों, यद्यपि ये कुबेर के पुत्र हैं और कुबेर तो देवताओं के खजांची हैं, यक्षों के नेता हैं, प्रमुख हैं, और कितने दुर्भाग्य की बात है कि इनके दो पुत्र पुत्रों की ये दशा हो गई है, इतने निर्लज्ज हो गए हैं और इतने अंधकार में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक साधु आ रहे हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक कुछ व्यवहार करना चाहिए। तो करुणा की भावना उत्पन्न हुई, नारद मुनि ने सोचा अपने मन ही मन में कि इनके ऐश्वर्य के कारण इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वैसे माता कुंती भी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना करती हैं, जन्मैश्वर्य सूत श्री एधमान मदह कुमान नैवर्हत्य विधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचर। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, ऐसे चार वस्तुएं हैं जिनका होने से व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के शरण में नहीं आ सकता है, और वो क्या है? पहली बात है ऐश्वर्य, धन होना, बहुत धनी व्यक्ति भगवान के उसे भगवान के शरण में आना बहुत मुश्किल होता है। जन्म किसी ऊंचे कुलीन परिवार में जन्म लिया हो किसी ने, उसको भी उस ऊंचे जन्म का घमंड रहता है, उसने बहुत पढ़ाई लिखाई करके बहुत बुद्धिमान बना है, बहुत ज्ञानी बना है, इसके कारण भी घमंड आ जाता है। और श्री सौंदर्य, कोई सुंदर होता है तब भी बहुत घमंडी हो जाता है, जन्मैश्वर्य श्रुत शिव एधमान मद कुमान। मद ये एक प्रकार का पागलपन है, घमंड का दूसरा अर्थ है पागलपन। मद जब व्यक्ति के अंदर घमंड आ जाता है तो वो पागल बन जाता है, उसको पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, वो बिल्कुल भ्रम में पड़ जाता है। और इसलिए कुंती माता कहती हैं कि ऐसे होने पर व्यक्ति निस्सहाय भाव से आपके शरण को ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक कि व्यक्ति निस्सहाय न हो अपने जीवन में, वो कैसे भगवान की शरण को ग्रहण कर पाएगा? वो सोचेगा कि मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा शिक्षण, मेरा सौंदर्य, मेरा धन, मेरा कुल इत्यादि, ये मेरी रक्षा करेगा। तो ये सब मेरे पास जब है, तो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम दो लंबे चौड़े बड़े यमलार जो वृक्ष बन जाओ, लेकिन मेरी कृपा से वृक्ष योनि में रहते हुए भी तुम जाति स्वर रहोगे, तुम्हारे पूर्व जन्म का याद तुम्हें रहेगा कि मैं पूर्व जन्म में हम लोग नलकूवर और मणिग्रीव थे, और खूब पछताओगे क्योंकि जब याद रहे अरे मैं कौन था, मैं क्या हो गया, पेड़ हो गया हूं, अरे मैं नलकूवर था मणिग्रीव था, अरे पेड़ हो और कुछ नहीं कर सकते हम इसके बारे में, हाय हाय भी नहीं कर सकते क्योंकि खड़े रहना पड़ता है, बोल नहीं सकते हैं, रो नहीं सकते हैं, हिल भी नहीं सकते हैं ज्यादा, बारिश में ठंडी में गर्मी में खड़े रहना पड़ता है। तो तुम खड़े रहोगे ऐसे, परंतु मेरी कृपा से भी देवताओं के 100 वर्षों तक ऐसे खड़े रहोगे, अर्थात पृथ्वी लोक की गणना में 1000 वर्ष बीत जाएंगे।